19 मार्च शनिवार का नमस्कार। भारत सुने फैसल मोहम्मद अली से। पेरिस चरमपंथी हमले का संदिग्ध और उसके चार साथी ब्रसल्स में गिरफ्तार। उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार पर छाए संकट के बादल, हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा वो अभी भी बहुमत में है।
सरकार जो ये दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से बहुमत में है और जो है हम फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे।
कश्मीरी पंडितों पर बीबीसी की खास पेशकश, इनका भी कश्मीर में आज मिलवाएंगे आपको क्षमा कॉल से।
हम ये भी समझ गए कि हम अकेले अजनबी और लावारिस लोग हैं और हमें निष्कासित किया जा रहा है।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पेरिस हमलों के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्देसलाम को ब्रसल्स से गिरफ्तार किया गया है। ब्रसल्स के मोलनबिक इलाके में एक घर पर छापे के दौरान सलाह अब्देसलाम को पकड़ा गया। इस दौरान उसके पैर में गोली लग गई है। इस छापे में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल नवम्बर में हुए चरमपंथी हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी। ये हमला पेरिस में कई जगहों पर किया गया था। प्रवासी संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत रविवार से ग्रीस आने वाले उन प्रवासियों को तुर्की वापस भेजा जाएगा जिनकी शरण के लिए जिनकी अर्जी खारिज की जाएगी। इसके बदले में यूरोपीय संघ तुर्की में हजारों प्रवासियों के पुनर्स्थापित करने में मदद करेगा। समझौते के तहत प्रवासियों को वापस लेने के बदले में तुर्की को यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलेगी। इसके अलावा यूरोपीय संघ में सदस्यता पर बातचीत में तेजी लाई जाएगी। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि इस समझौते पर आगे भी अड़चने आने वाली हैं। मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि इस समझौते के तहत कई अड़चने आएंगी। इसे लेकर कई बड़ी कानूनी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा, लेकिन हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं इसको उल्टा नहीं जा सकता। ये मेरे लिए अहम है कि हम सब इस समझौते पर पहुंच पाए हैं। ये थे एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा ने साओ पाओलो में राष्ट्रपति डिल्मा रूएफ के समर्थन में जमा हुए हजारों लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डिल्मा रूएफ को पद से हटाने के लिए तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है। पिछले रविवार को डिल्मा रूएफ की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। लूला ने कहा कि वो रोक के बावजूद राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे। लूला पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है और डिल्मा रूएफ पर सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में वित्तीय गड़बड़ी की जांच में बाधा डालने के आरोप लगाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की है और कहा है कि उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के सहयोगी चीन समेत सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से ये बयान दिया था कि ये परीक्षण स्वीकार्य नहीं है। कल उत्तर कोरिया ने 800 किलोमीटर तक मार करने वाली कम से कम एक मिसाइल समुद्र में दागी थी। इस महीने उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण भी किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया को कब्जे में लेने के 2 साल पूरे होने के मौके पर क्राइमिया और दक्षिण रूस को जोड़ने वाले एक पुल के कामकाज का उद्घाटन किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बेल्जियम से, जहां पुलिस का कहना है कि पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों के संदिग्ध सलाह अब्देसलाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेरिस हमले में 130 लोगों की मौत हो गई थी। अब्देसलाम की गिरफ्तारी पुलिस की घंटों की छापेमारी के बाद हुई, जिसके दौरान उन्हें गोली भी लगी। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी के दौरान कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी रिपोर्ट सुने हरिता कांडपाल से।
पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए चरमपंथी हमलों के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्देसलाम की तलाश सरगर्मी से चल रही थी, जो कल बेल्जियम के मोलनबीक इलाके में पूरी हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने बेल्जियम के मोलनबीक इलाके में एक घर पर छापा मारकर सलाह अब्देसलाम को गिरफ्तार कर लिया है। बेल्जियम के संघीय अभियोजनकर्ता कार्यालय के प्रवक्ता एरिक वैन डेर सिप ने बताया कि छापे के दौरान अब्द सलाम घायल हो गया है। एरिक वैन डेर सिप ने कहा, साला अब्द सलाम को स्थानीय समय अनुसार 4:40 पर शाम को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी रियो दे स्क्वाद्रोवेंस में एक घर पर तलाशी के दौरान हुई। उसे पैर में चोट लगी है और उसे अस्पताल भेजा गया है। उसी पते पर मोनिर अहमद अल हाज उर्फ आलम शुक्री को भी गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के मुताबिक इस छापे के दौरान दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये एक गहन काम था, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत थी। चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में ये परिणाम लोकतंत्र के पक्ष में महत्वपूर्ण है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के शब्द। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने अब्द सलाम को जल्द ही फ्रांस लाने की उम्मीद जताई है। फ्रांसवा ओला ने कहा, ये गिरफ्तारी अहम पड़ाव है, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि कई लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि बेल्जियम, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों में चरमपंथियों का नेटवर्क काफी बड़ा था, जिन्होंने 13 नवंबर के घृणात्मक हमलों में हिस्सा लिया या वित्तीय मदद की। उन लोगों को जब तक पकड़ नहीं लिया जाएगा, लड़ाई जारी रहेगी। फ्रांसवा ओला के शब्द। अब्द सलाम 26 साल का फ्रांसीसी नागरिक है, जिसका जन्म ब्रुसेल्स में हुआ और पेरिस हमलों से पहले वो मोलेनबीक में रहता था। मोलेनबीक ब्रुसेल्स का वो इलाका है जहां पेरिस हमलों के बाद जांच केंद्रित हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि पेरिस हमलों के तुरंत बाद अब्द सलाम बेल्जियम लौट आया था और पेरिस हमलों में उसके भाई ब्राहिम की मौत हो गई थी। जनवरी में पुलिस ने कहा था कि ब्रसेल्स के स्केयरबीक जिले में बम बनाने की एक फैक्ट्री मिली है, जिसका इस्तेमाल अब्द सलाम छिपने के लिए किया करता था। पेरिस हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी और चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद से अब्द सलाम की तलाश शुरू हो गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले में शामिल लगभग सभी लोगों का पता लगा लिया गया है। ज्यादातर संदिग्धों की हमले में मौत हो गई या फिर जांच के लिए मारे गए छापों के दौरान इन लोगों को मार दिया गया।
खरीदा कांडपाल सुना रही थी एक रिपोर्ट पेरिस हमले के संदिग्ध और 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बारे में।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार संकट में घिर गई है। वित्त विधेयक पर कांग्रेस के 9 विधायकों ने अपनी ही सरकार के विरोध में बीजेपी की मांग के साथ नारे लगाए। वहीं हरक सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष ने 28 तारीख तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया है। पूरी रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
बागियों की अगुवाई पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कर रहे थे। हरक सिंह का आरोप है कि सरकार चुनिंदा लोगों की सरकार बनकर रह गई है।
ये सरकार नौजवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी ये सरकार है। इसके सारे रवैया इस तरह थे कि हम लगातार फंस चुके थे।
कांग्रेसी विधायकों की बगावत पर सरकार ने हैरानी जताई। उसका कहना है कि दिन भर विभागीय बजट पास होते रहे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पास कराने में मदद की, यहाँ तक कि विनियोग विधेयक भी ध्वनिमत से पारित हुआ और उसके बाद अचानक ये नौबत आ गई। बता रही हैं संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश।
इसे देख के मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, वाइस वोट से सारे विधेयक पारित हो रहे थे, स्वयं हरक सिंह ने अपने 2 विधेयक पारित कराए, सब मंत्रीगणों ने 2 विधेयक पारित कराए, इसी तरह विनियोग विधेयक तो सार था, सारे विधेयक थे, इसी तरह वो पारित होने जा रहा था। लेकिन जब स्पीकर ने कहा कि हाँ की संख्या अधिक है, पारित हो गया, तो ये खिसिया गए, खिसिया के बाहर आ गए। एक प्रश्न नहीं, 100 प्रश्न है, इन्हें क्या हासिल हुआ? ये कांग्रेस आज भी ये कांग्रेस के सदस्य है, इन्हें ना किसी ने एंटी डिफेक्शन लॉ में निकाला, न व्हिप के उल्लंघन में निकाला, आज की तारीख तक भी ये कांग्रेस के सदस्य हैं। ये बस में बैठ के बीजेपी के मेंबर्स के साथ गए हैं, तो ये गवर्नर साहब को बताएं हम कांग्रेस छोड़ के आ गए हैं।
बीजेपी आलाकमान की ओर से भी प्रदेश के प्रभारी श्याम जाजू और अन्य नेता पहुंचे हुए थे। पार्टी का कहना है कि सरकार को जाना चाहिए, राज्यपाल इस सरकार को बर्खास्त करें और बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी
हमारे साथ हैं, इन्होंने जो सोचा था कि हम घोड़े को बना करके जो है पहले उसको गड्ढे में डलवाएंगे, फिर उसमें सवार होकर बैठे पार करेंगे, ये फेल हो गए। सारी चीजें सामने आ गई है और इसलिए हम पूरा इनका जो झूठ है वो जनता तक ले जाएंगे, उसका पर्दाफाश करेंगे और जनता हमारे साथ आएगी।
लेकिन सरकार इस मामले में आश्वस्त है कि सदन में उसका बहुमत जस का तस है। उसका कहना है कि अगर बीजेपी को शंका है तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता भी जा सकती है। 15 साल पुराना राज्य उत्तराखंड, सत्ता राजनीति की उठापटक, राजनीतिक अस्थिरता, स्वार्थ और कुर्सी के तमाशे से उबर नहीं पाया है। कांग्रेस और बीजेपी की बारी बारी से आई सरकारों में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब सत्ता परिवर्तन या इसे लेकर घमासान न होता रहा हो। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के साथ भी यही होता दिख रहा है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत का हालांकि दावा है कि वो अभी भी बहुमत में हैं और जिन लोगों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सीधे चलते हैं इस बार भी देहरादून शिव जोशी के पास, जो हरीश रावत की प्रेस वार्ता में मौजूद थे। शिव, ये बताएं कि क्या कहा मुख्यमंत्री ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
जी, मुख्यमंत्री हरीश रावत का तो अभी तक यही एक तरह से जिसे कहते हैं स्टैंड है कि उनकी सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और वो सदन में बहुमत साबित कर देंगे, और अगर बीजेपी को ये लगता है कि उसको सरकार की बहुमत पर आशंका है या अविश्वास है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। फैजल, उत्तराखंड विधानसभा में कल जो हंगामा हुआ था उसके बाद ये 9 बागी विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले थे और इन लोगों ने वहां पर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद ये सभी 35 विधायक जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली चले गए। तो आज इन सबकी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सामने हाजिरी हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री की बात करें तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको किससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा।
और सरकार जो ये दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से बहुमत में है। यदि प्रतिपक्ष को हमारे बहुमत में कोई शक है तो हाउस अभी सेशन में है, वो अविश्वास का नोटिस दे और जो है हम फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे।
उत्तराखंड की राजनीति को नजदीक से देखने वाले इस बात पे भी घोर अचरज जता रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के एक दिग्गज रह चुके हेमवती नंदन भोगना के जो बेटे हैं विजय भोगना, वो कैसे पाला बदल सकते हैं जबकि उन्हें कांग्रेस पहले अपना मुख्यमंत्री बना चुकी थी। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के 2 मंत्रियों के बीच भी मारपीट की खबर मिली। मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस सब के बावजूद न जाने क्यों अब भी भरोसा है कि कांग्रेस टूटी नहीं है।
वो दावा कर रहे हैं तो इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा कि वो कौन कौन मेंबर है, क्योंकि अभी तो केवल एक चेहरा सामने आ रहा है और ऐसे मामलों में जो भी कार्रवाई होती है पार्टियों के अंदर उस तरीके से कार्रवाई।
अब हरीश रावत एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी और रणनीतिकार भले ही माने जाते हों लेकिन ये तो तय है कि इस बार वे गच्चा खा गए और पार्टी के भीतर असंतोष की जानकारी होने के बावजूद वक्त रहते वो उसे न्यूट्रलाइज करने में विफल रहे। सदन के भीतर अब जो नाटकीय परिवर्तन जो कल रात हुआ उसके लिए हरीश रावत बीजेपी और संघ के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
आज एक बात अनयूजुअल दिखाई दी, बीजेपी और RSS के टॉप ब्रास यहाँ दिखाई दिए, सदन की दीर्घा भी दिखाई दिए। हमको ये लगा कि उनके एक बाहुबली विधायक ने घोड़े की टांग तोड़ दी है, उसके कारण उनके विधायकों में जो आक्रोश है उस आक्रोश को थामने के लिए वो आए हैं।
बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू और संगठन के पदाधिकारी कैलाश विजयवर्गीय, ये बात सही है कि पिछले 2 दिन से देहरादून में ही डटे थे। कल देर रात चार्टर प्लेन से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी देहरादून आ गए थे। असल में बीजेपी के लिए जो उत्तराखंड का तख्ता पलट है, असल में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाली रणनीति है। उसे राज्यसभा के लिए जरूरी संख्या बल जुटाना है और इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक अपने हों। जुलाई में ही कई हिंदी भाषी जो राज्य हैं फैजल, उनकी राज्यसभा सीटें वहां पर खाली हो रही हैं जिनमें उत्तराखंड की एक सीट भी है। तो इसमें बीजेपी में जो पहले जा चुके सतपाल महाराज हैं या जो ताजा विजय भोगना साहब गए हैं इनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन आखिरी बात जो बीजेपी के अति उत्साह के बीच जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आखिर कांग्रेस के जो 9 विधायक गए हैं बीजेपी में, इन पर दल बदल विरोधी कानून तो लगेगा, वे सदन के भीतर अलग धड़ा तो नहीं बना सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर बीजेपी का ये जो दांव है ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए।
بہت بہت شکریہ شیو جوشی اس پوری جانکاری کے لیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں ہریانہ کی طرف، جہاں آرکشن کی مانگ اٹھا رہے جاٹ نیتاؤں نے کل ہریانہ کے چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی سے ملاقات کی اور اس کے بعد 31 مارچ تک آندولن استھگت کرنے کا اعلان کیا۔ اس مدعے پر اگلی بیٹھک 3 اپریل کو بلائی گئی ہے۔ اسے لے کر ہمارے سہیوگی واتسلیہ رائے نے بھارتیہ جاٹ آرکشن سنگھرش سمیتی کے راشٹری ادھیکش یشپال ملک سے بات کی۔
جو ریزرویشن سے سمبندھت مدعا ہے اس کو تو اسی بجٹ سیشن میں جو ہریانہ اسمبلی کا ہے پاس کرا دیا جائے گا، اس میں ہم نے اپنے سجھاؤ دے دیے ہیں۔ ہم نے آندولن کو 31 تاریخ تک، کیونکہ بجٹ ستر ہے ہریانہ اسمبلی کا، تو 31 تاریخ تک آندولن استھگت کر دیا ہے اور 3 اپریل کو ہم لوگوں نے اپنی بیٹھک بلائی ہے۔ سبھی راجیوں سے لوگ آئیں گے اور دلی میں ملاقات ہوگی۔
کیا مانگ پتر آپ نے پیش کیا ہے ہریانہ سرکار کے سامنے؟
ٹوٹل ہماری 7 مانگ تھی۔ ایک تو پہلے ہی دن ہو گئی تھی کہ جو 5 منتریوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے سینٹر کے لیے اور ہریانہ سرکار کی گتیویدھیوں پر نظر رکھنے کے لیے، تو وہ بن گئی تھی 22 تاریخ میں جب آندولن نے استھگت کیا۔ اور دوسری مانگ ہریانہ کے آرکشن کی تھی، اور تیسری مانگ جو کیندر میں اسمانتا ہے، 700-800 جاتیاں اس کو پربھاوت ہوتی ہے اس اسمانتا کی وجہ سے، تو اس کی اسمانتا بھی دور کی جائے جو راجیہ اور کیندر کی سوچی کی اسمانتا ہے۔ اور چوتھی مانگ ہماری یہ تھی کہ جو بچے اس آندولن میں شہید ہوئے ان کو معاوضہ اور نوکری دی جائے۔ اور پانچویں مانگ ہماری یہ تھی کہ جو ادھیکاریوں نے اس میں غلط رول ادا کیا ان کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح جو پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو۔ اور ایک مانگ یہ تھی کہ جو آندولن کے دوران کے مقدمے ہیں اس مقدموں کی بھی واپسی ہو۔ اور ایک تھی کہ جو سانسد نے بھڑکاؤ بھاشن دے کر اور سماج کا ماحول خراب کیا اس کے خلاف کاروائی ہو۔
تو سرکار کی طرف سے آپ کو آشواسن کیا ملا؟
جو تمام مانگے ہیں ان پہ سب سکاراتمک رہا۔ سانسد کی جو بات تھی اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بھاوناؤں کو کیندر سرکار سے اور پارٹی کو اوگت کرا دیں۔
یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کیبنٹ میں بھی آرکشن کو لے کر خاص طور پر کئی منتریوں نے آپتی بھی اپنی درج کرائی ہے۔
جو منتریوں کی آپتی ہے اس پہ بھی آج سرکار کو سجھاؤ دیا گیا۔ کچھ منتری سماج کو گمراہ کر رہے ہیں اور کی اپنی مہتوپاکشا ہریانہ کے مکھیہ منتری کا وکلپ بننے کی ہے۔ باقی اس میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے کہ کو کیا جائے۔ اس کا بھی سجیشن ان کو بتایا گیا کہ ان کے ودھائکوں کی جو ہریانہ اے کے ودھائک ہیں جو اے شرینی میں آتے ہیں ان جاتیوں کے ودھائکوں کی لسٹ ان کی بنا کے ان کی الگ مکھیہ منتری میٹنگ لے اور بی کی الگ سے میٹنگ لے۔
اور اب ایک بار رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اخبار کیا کہہ رہے ہیں۔ ہریتا کانڈپال اخباروں کے ساتھ موجود ہیں اور انڈین ایکسپریس سامنے مجھے دکھ رہا ہے۔
جی فیصل صاحب، انڈین ایکسپریس کی پہلی خبر میں آج بتانا چاہ رہی ہوں۔ اردو رائٹرز آسکڈ ٹو ڈکلیئر مائی بک ناٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ نیشن۔ جی، اردو کے لیکھکوں سے یہ کہا جا رہا ہے۔ مانو سنسادھن وکاس منترالے کے تحت جو نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج، یہ اردو بھاشا کے لیے جو سنستھا کام کرتی ہے، پریشد جو کام کرتی ہے، اس نے ایک فارم نکالا ہے جو لیکھکوں سے یہ پوچھتا ہے، یہ کہنے کو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ لکھ کے دیجئے، اور 2 گواہ بھی مانگے جاتے ہیں کہ آپ جو لکھنے جا رہے ہیں کتاب اس میں آپ سرکار یا پھر دیش کے خلاف کچھ نہیں لکھیں گے۔ تو یہ ایک فارم کچھ سمے سے دیا جا رہا ہے اردو کے لکھکوں۔ یہ خبر انڈین ایکسپریس نے چھاپی ہے اپنے پہلے پنے پر۔ ایک اور خبر نو بھارت ٹائمس نے چھاپی ہے پہلے پنے پر۔ نوسٹرڈامس نے کہا تھا نمو، یہ کیندریہ گرہ راجیہ منتری کرن رجوجو نے فیس بک پر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
مطلب نوسٹرڈیمس صاحب کو بھی
1555 میں انہوں نے بھوشیہواڑی کر دی تھی
2014 سے 2026
کے بیچ ایک ایسا شخص بھارت کو لیڈ کرے گا جو پہلے ناپسند کیا
جائے گا
2026 تک، اور اس کے بعد انہیں خوب پسند کیا جائے گا۔ یہ خبر نو بھارت ٹائمس نے چھاپی ہے۔ اس کے علاوہ عمر اور انربان بھی جیل سے باہر ہو گئے ہیں، ان کو انترم ضمانت مل گئی ہے۔ یہ نو بھارت ٹائمس نے چھاپی ہے اپنی پہلی خبر، اور ہندو نے بھی، دا ہندو انگریزی اخبار نے بھی اسے پرمکھتا دی ہے۔ عمر اینڈ انربان بیک ایٹ جے این یو، وہ جے این یو میں کل رات انہوں نے بھاشن بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ مودی محبوبہ میٹ کالڈ آف، یہ ہندو کی خبر ہے۔ جموں کشمیر میں سرکار بنانے کی کوشش کو جھٹکا لگا ہے یہ خبر آج ہے۔
بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے ہریتا۔
وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے روتے ہیں۔
میں شیو شنکر بھولے ناتھ کا بابا، بھولے ناتھ کا شنکر، اس بابے کا میں اپنی جان دے سکتا ہوں اس بابے کے لیے۔
وہ اپنی بکھری دھروہر کو سہیجنا چاہتے ہیں۔
इसका सारा जो ये मंदिर है ये सारा डैमेज हो गया था। फिर हमने हमारी संस्था ने हमारी
वो याद करते हैं खौफ भरी रातों को।
अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाले मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे।
और जिन्होंने बंदूक उठाई,
भाई देखिए मैं तो हर बच्चे से यही कहूंगा भूल कर भी हथियार मत उठाना क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है। मेरे बच्चों हमने इस जहर को पिया हुआ है।
इनका भी कश्मीर से लौटकर जुबैर अहमद की विशेष रिपोर्टें सोमवार 21 मार्च से रोजाना शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
जम्मू कश्मीर में 90 के दशक के वे दिन और रात कैसे रहे होंगे जब चारों निराशा और आशंका के बादल छाए हुए थे, खासतौर पर महिलाओं के लिए। ये वो दिन थे जब पुराने रिश्ते और दोस्तियां शक और आशंका के अंधेरे में खोने लगी थीं। श्रीनगर की सड़कों पर आज़ादी के नारे लगने लगे थे और घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका था। कवियत्री शमा कौल का कहना है कि तब एक लेखिका के रूप में उनकी पहचान धूमिल पड़ गई थी। प्रस्तुत है इनका भी कश्मीर श्रृंखला की आखिरी कड़ी।
इतने बरस पहले उस ठंडी रात के बाद निरंतर दिन में और रात के अंधेरे में जुलूस निकलने लगे और पाकिस्तान के नारे लगने लगे थे। मैं एक दफ्तर में काम किया करती थी जहां लोग हमें दहशत से भरने लगे थे। हम आशंका लिए हुए सुबह घर से निकलते और आशंकाओं में डूबे हुए शाम को वापस लौटते। शासन प्रशासन नाम का कोई तंत्र जीवित न था जो हम स्त्रियों के प्रति उत्तरदायी होता। मेरे साथ लेखिका होने का विशेषण लगा हुआ था पर मैं मात्र एक स्त्री ही थी। स्त्री की सबसे नाजुक और रक्षणीय चीज़ उसकी देह होती है। मार डालते तो मुक्ति हो जाती मगर स्त्रियों के लिए उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा था। स्त्री को देह के स्तर पर जलील करने का उनका कार्यक्रम था और वो काम शुरू हो चुका था। स्त्री सिर्फ स्त्री थी, एक देह। उन्होंने ऐसा सोचती रही कि शायद कोई मानवीयता हमें बचाए, ये आशा रही, पर हर तरफ सन्नाटा था। ऐसे में स्त्री होना बहुत बहुत खतरनाक था। मैं सोचती हम जीते तो थे उत्पीड़न अपमान और संतरास का जीवन मगर फिर भी जैसे तैसे जी लेते थे, पर यह हालत हो जाएगी इसकी कल्पना ही न की थी हम। काम दाम कुछ न करते सिर्फ इस भयावह तांडव के गीत गाते हुए रक्त रंजित नृत्य करते। हर गली चौराहे और सड़क पर लोग खेल खेल में इकट्ठा हो जाते और जुलूस निकालते और अपने खूनी संकल्पों के नारे लगाते। हमारी आशा केंद्र सरकार पर टिकी थी पर उसे भी लकवा मार गया था। आतंकी सुरक्षा बलों और सेना का भयानक ढंग से प्राणहानि कर रहे थे। हथियार का प्रयोग सिर्फ जहादी कर रहा था जबकि राज्य का आदेश था कि सुरक्षा बल अर्थात सेना संयम बरते। सेक्युलरिज्म और लोकतंत्र का भयावह ढंग से अर्थ परिवर्तन हो रहा था, यानी सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म न था कम्युनलिज्म हो गया था और लोकतंत्र लोकतंत्र न था तानाशाही हो गई थी वो। हम ये भी समझ गए कि हम अकेले अजनबी और लावारिस लोग हैं और हमें निष्कासित किया जा रहा है। हम मात्र 5% और भी निहत्थे और हर तरफ से आरक्षित मूल्य आधारित जीवन के गहन विश्वासी थे। ऐसे में मेरी सब कविताएं सब कहानियां और आलेख कोई भी साहित्य किसी काम का न था। अपने जैसे उन तमाम दूसरे लोगों की तरह ही मुझे अपना और अपने परिवार का वजूद बचाना था पर उसके लिए हमें हमेशा के लिए अपना घर धरती और समाज छोड़ना था। अपनी जड़ें छोड़ी थी। हमारा वजूद बच गया ऐसे तो, पर क्या हमारा वजूद बच गया?
कई सवाल, इनका भी कश्मीर कैसी लगी ये कड़ी हमें लिख भेजिए।
बीबीसी इंडिया बोल।
कोलकाता के मैदान में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने, मगर दोनों देशों के बीच T20 क्रिकेट मैच को लेकर युद्ध सा जुनून क्यों? क्या ये क्रिकेट कम राजनीति ज्यादा है? फूटी आंख नहीं सुहाते, फिर भी तुम बिन रह नहीं पाते। अपनी राय जाहिर कीजिए इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1800 11 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और आप जानते हैं कि क्या हो रहा है खेल जगत में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में कल दो मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हरा दिया। कल पहले मैच में धर्मशाला में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 143 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 134 रन बना सकी। आखिरी दो गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों की जरूरत थी। ऐसे में एंडरसन ने कल्टर नाइल को बोल्ड कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।
दो बॉलों में 11 रन, क्या सुपर ओवर होगा? बचे नहीं आउट होते हुए कुट नाइक और एंडरसन एक और विकेट लेते हुए न्यूजीलैंड ये मैच जीतने के बिल्कुल पास।
हालांकि सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और शेन वाटसन ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवर में 44 रन जोड़कर शानदार शुरुआत की, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। उस्मान ख्वाजा 38 और शेन वाटसन 13 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मिचेल मार्श ने 24 और ग्लेन मैक्सवेल ने 22 रन बनाए। न्यूजीलैंड के मैकलंगन ने 17 रन देकर 3 और सेंटनर ने 30 रन देकर 2 विकेट झटके। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने मार्टिन गप्टिल के 39, कप्तान केन विलियमसन के 24, ग्रांट इलियट के 27 और कोलिन मुनरो के 23 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। ये न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत रही, जिसने इससे पहले भारत को 47 रन से हराया था। उधर मुंबई में खेले गए दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने जो रूट के 83 और जेसन रॉय के 43 रनों की मदद से जीत के लिए 230 रनों का लक्ष्य 19.4 ओवर में हासिल करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से मात दी। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर दक्षिण अफ्रीका ने हाशिम मामला के 58, क्विंटन डिकॉक के 52 और जेपी ड्यूमिनी के नाबाद 54 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए थे। उधर विश्व कप में ही कल महिला वर्ग में भी दो मुकाबले खेले गए। पहले मैच में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड की महिला टीम को 93 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान और सलामी बल्लेबाज सुजी बेट्स के 82 और सोफी डिवाइन के 47 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 177 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 5 विकेट खोकर 84 रन बना सकी। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को 6 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के सामने जीत के लिए 103 रनों का लक्ष्य था, जो उसने एलेक्स ब्लैकवेल के नाबाद 42 और कप्तान मेग लेनिंग के नाबाद 30 रनों की मदद से 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
प्रोग्राम खात्मे की तरफ है, लेकिन उससे पहले सुनिए हरिता कांडपाल से विश्व समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। पेरिस हमलों के मुख्य संदिग्ध सलाह अब्दुस्सलाम को ब्रुसेल्स से गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रुसेल्स के मोलेनबीक इलाके पर एक घर पर छापे के दौरान अब्दुस्सलाम को पकड़ा गया। इस दौरान उसके पैर में गोली लग गई। इस छापे में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। प्रवासी संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत रविवार से ग्रीस आने वाले उन प्रवासियों को तुर्की वापस भेजा जाएगा शरण के लिए, जिनकी अर्जी खारिज कर दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा की है और कहा है कि उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया को कब्जे में लेने के 2 साल पूरे होने के मौके पर क्राइमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन किया है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो मैनेजर थे शाकिर आलम। कुछ ही देर में फिर से पेश होंगे विश्व भारती के साथ। नमस्कार।